हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी आदित्य ने गंभीर लहजे में कहा, आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि जितना बड़ा हमारा ये प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ बिताना होगा। आदित्य की बात सुनकर झलक ने अपनी कुर्सी पर हल्का सा पीछे टिकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में ना तो झिझक थी ना संकोच, बस वही ठंडी सी गंभीर चमक। ज्यादा वक्त, मिस्टर राणा, आप शायद फिर से भूल रहे हैं, मैं किसी के साथ वक्त गुजारने के लिए नहीं, डील क्लोज करने के लिए बैठती हूँ। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, और मैं भी यही चाहता हूँ मिस मल्होत्रा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में साइट विजिट्स होंगी, क्लाइंट मीटिंग्स होंगी, ट्रैवल होगा, और उन सब में आपकी मौजूदगी जरूरी है। डोंट वरी, उसने फाइल बंद करते हुए कहा, काम के मामले में मैं कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन एक बात क्लियर रखिए, प्रोफेशनल लाइन क्रॉस नहीं होगी। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा, वही झलक, पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा शार्प और ज्यादा अनरीडेबल लग रही थी। फाइन, उसने शांत आवाज में कहा, तो फिर हमें अभी निकलना है साइट विजिट के लिए, आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। झलक ने तुरंत तपाक से जवाब दिया, जरूरत नहीं, मैं अपनी गाड़ी से आ जाऊंगी। इतना कहकर उसने इंटरकॉम दबाया, शालिनी, मिस्टर राणा के लिए कॉफी भिजवा दीजिए और मीटिंग के मिनट्स मेल कर देना। बाहर खड़ी शालिनी ने ये सुना तो उसके चेहरे पर नफरत और जलन साफ झलक गई। उसके लिए झलक सिर्फ बॉस नहीं थी, वो उसका सबसे बड़ा डर बन चुकी थी। झलक कुछ देर अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठी रही और अपना काम करती रही। तब आदित्य झलक को चुप देखकर आगे बोला, आई होप मिस मल्होत्रा आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसने झलक को कुछ जताते हुए कहा। जैसे ही आदित्य ने वो बात कही, झलक चौंकते हुए बोली, आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर राणा? आदित्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, बस इतना कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए, हमें जान लगाकर काम करना होगा। आप मेरी बात समझ रही हैं ना मिस मल्होत्रा? झलक ने पल भर के लिए पलकें झुका ली। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक आदित्य का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, कबीर। आदित्य ने कॉल रिसीव की और थोड़ा साइड में जाकर फोन कान से लगा लिया। अबे कहाँ है तू? कबीर की आवाज आई। कल तू इतना परेशान था कि मुझे ही डांट दिया, आज मेरा मूड खराब है, तुझे मिलना है, आदित्य ने धीमी आवाज में कहा। मैं अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, शाम को मिलते हैं। कबीर तुरंत हंस पड़ा। इम्पोर्टेंट मीटिंग? ओह समझ गया, झलक मल्होत्रा के साथ है ना? भाई उस लड़की के पास जाने से पहले सिक्योरिटी गार्ड साथ रख लिया कर, खूबसूरती अक्सर खतरनाक होती है। कबीर की बकवास सुनकर आदित्य ने माथा दबाया, अपनी फालतू बातें बंद कर, और हाँ तू ब्रह्मचारी है ये मत भूल। अरे हाँ, कबीर ने नाटकी आवाज में कहा, याद दिलाने के लिए धन्यवाद, वरना ऐसी खूबसूरती देखकर किसी का भी संतुलन बिगड़ सकता है। फोन कट गया। आदित्य ने जैसे ही फोन जेब में रखा उसका ध्यान अनायास ही झलक की ओर चला गया। झलक इस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। कीबोर्ड पर तेजी से चलती उसकी उंगलियां, हल्के से खुले बाल जो उसके गालों को छू रहे थे, और उसका गंभीर आत्मविश्वास से भरा चेहरा। आदित्य कुछ सेकंड तक बस उसे देखता ही रह गया, उसका गला सूख गया। उधर झलक को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार देख रहा है। उसने नजर उठाई और सीधे आदित्य से आंखें मिल गईं। उसका खून खौल उठा। मन ही मन वो बुदबुदाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। उसने सिस्टम बंद किया और सख्त लहजे में बोली, मिस्टर राणा, मुझे आपके साथ काम करना पड़ेगा ये मैं मानती हूँ, लेकिन एक बात साफ सुन लीजिए, मुझसे दूरी बनाकर रखें, मुझे अपने आसपास मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर वो कुर्सी से उठ गई। आदित्य वहीं खड़ा रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी खामोशी को झलक इस तरह गलत समझ लेगी। मन ही मन वो सोचने लगा, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। उसे अजीब सा बुरा लग रहा था, मैंने आज तक किसी को इस तरह नहीं देखा और न जाने क्यों इसे देखता ही चला जा रहा हूँ। ये सोचकर उसके चेहरे पर खुद ब खुद हल्की सी मुस्कान आ गई। उधर अनामिका झलक का इंतजार कर रही थी। तभी केबिन का दरवाजा खुला और अनामिका अंदर आई। हे मैडम सीईओ, उसने हल्के मजाक में कहा, चलो ना, काम खत्म हो गया होगा, जल्दी निकलते हैं, अब तो ज्वेलरी शॉप चलें, वरना मैं तुम्हें अगवा कर लूंगी। झलक ने सोचा पहले अनामिका को ज्वेलरी की शॉपिंग करा देती है और साइड देखने वो थोड़ी देर बाद चली जाएगी। और दोनों जैसे ही बाहर निकली उन्हें देखकर शालिनी की मुठ्ठियां कस गईं। उसने मन ही मन कहा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है झलक मल्होत्रा, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। तभी आदित्य झलक के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, मिस मल्होत्रा, हमें अभी साइट का एक और सेक्शन देखना होगा, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है आप अपनी गाड़ी से जाना चाहती हैं, बट आप खुद समझदार हैं, अगर हमें एक ही जगह जाना है तो अलग अलग गाड़ियों से जाकर खुद को बेवकूफ साबित नहीं करना चाहिए। इतना कहकर उसने सनग्लास लगाया और वहां से चला गया। अनामिका ने शरारती अंदाज में सीटी बजाई, ओहो हैंडसम, और तुम इसके साथ काम कर रही हो? झलक ने सिर पकड़ लिया, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, दादाजी का ड्रीम प्रोजेक्ट है,
और मैं दादाजी का दिल नहीं दुखाना चाहती, और वैसे भी अगर मैं अब पीछे हटी तो कंपनी को नुकसान होगा। फिर गहरी सांस लेकर बोली, तुम ज्वेलरी शॉप चली जाओ, मैं साइट देखकर सीधे वहीं पहुंचूंगी। ये बोलकर छलक वहां से निकल गई। दूसरी ओर शालिनी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ छलक रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा प्लान शुरू होने से पहले ही बिखर गया हो। जहां उसका सपना था मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर राज करने का और आदित्य को अपनी जिंदगी में शामिल करने का, अब सब कुछ उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया, अगर किसी भी तरह आदित्य को अपने जाल में फंसा लिया तो समाज का दबाव उसे मजबूर कर देगा। शालिनी की आंखों में अब खतरनाक चमक थी और उधर झलक कार की खिड़की से बाहर देखती हुई खामोशी से आगे बढ़ रही थी। बिना ये जाने के कई निगाहें, कई साजिशें उसकी ओर बढ़ चुकी हैं। आदित्य खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार सड़क से फिसलकर झलक पर चली जाती थी। झलक खिड़की के बाहर देख रही थी, बिल्कुल खामोश। एक बार भी उसने आदित्य की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। कुछ किलोमीटर शहर से बाहर निकलते ही गाड़ी एक सुनसान से इलाके में आकर रुकी। चारों ओर फैला सन्नाटा, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। आदित्य के मन में एक पल को हलचल हुई। उसे लगा कहीं झलक ये न समझ बैठे कि वो जानबूझकर उसे ऐसी जगह लेकर आया है। उसने तुरंत सफाई दी, मिस मल्होत्रा प्लीज इसे गलत मत समझिएगा, ये जगह सुनसान जरूर है लेकिन यही हमारे नए प्रोजेक्ट की साइट है, सारा काम यहीं से शुरू होगा, बाकी तैयारियां हो चुकी हैं। झलक ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर आसपास की जगह को। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। बेपरवाही से बोली, मिस्टर राणा आपको मुझे लेकर डरने की जरूरत नहीं है, सुनसान जगह में मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, आप मेरे साथ पूरी तरह से सेफ हैं। इतना कहकर वो गाड़ी से उतर गई। आदित्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मन ही मन उसने सोचा, क्या वाकई इस लड़की को किसी से भी डर नहीं लगता, वेरी इम्प्रेसिव। वो भी गाड़ी से बाहर आ गया। झलक चारों ओर ध्यान से देखने लगी। करीब 100 एकड़ में फैली एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री, कई सालों से वीरान, यही जगह उनके नए प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई थी। शहर से थोड़ी दूरी पर, शहर की हलचल से थोड़ा दूर, खुला सा इलाका जहां जमीन पर सिर्फ मिट्टी, अधूरे खंभे और दूर दूर तक फैला प्रोजेक्ट साइट का नक्शा बिछा हुआ था। झलक ने कार से उतरते ही सनग्लास ठीक किए, ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और बालों का स्लीक बन, हर कदम में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। झलक ने छोटा सा जवाब दिया, जैसे साफ कर देना चाहती हो।
ये मुलाकात सिर्फ काम के लिए है, आदित्य ने पहले ही कुछ लोगों को अपने आने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, और उन दोनों को देखते ही साइट इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर दौड़ते हुए आए। मैम, सर, हमने पूरी साइट रेडी रखी है, लेट्स स्टार्ट, झलक ने बिना वक्त गवाए कहा। दोनों साथ साथ चलते हुए साइट के अंदर बढ़े। आदित्य जमीन की ओर इशारा करते हुए समझाने लगा, यहां कमर्शियल टावर आएगा, सामने ग्रीन जोन और पीछे रेजिडेंशियल ब्लॉक। झलक बीच बीच में सवाल करती रही, फाउंडेशन टेस्ट रिपोर्ट, ड्रेनेज प्लान, सेफ्टी ऑडिट क्लियर हुआ या नहीं। उसके सवाल इतने सटीक थे कि इंजीनियर भी एक दूसरे को देखने लगे। आदित्य ने हल्की सी नज़र उसकी तरफ डाली, आपने फाइल बहुत ध्यान से पढ़ी है। मैं बिना पढ़े साइन नहीं करती, झलक ने सीधा जवाब दिया। चलते चलते अचानक झलक का पैर कच्ची मिट्टी पर फिसला, संतुलन बिगड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो गिरे आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ सेकंड, साइट का शोर जैसे अचानक खामोश हो गया। झलक ने उसकी तरफ देखा और उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया, आई एम फाइन। उसकी आवाज़ ठंडी थी लेकिन आंखों में हल्की सी बेचैनी साफ दिखी। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। थोड़ा आगे जाकर झलक रुक गई, दूर अधूरी इमारतों को देखते हुए बोली, ये प्रोजेक्ट मेरे दादाजी का सपना है, मैं इसे किसी भी हाल में फेल नहीं होने दूंगी। आदित्य ने पहली बार उसकी आवाज में भाव सुना, और मैं इसे फेल होने नहीं दूंगा, उसने गंभीरता से कहा, क्योंकि अब ये सिर्फ आपका नहीं, हमारा प्रोजेक्ट है। झलक ने उसकी तरफ देखा, पहली बार बिना तीखापन के, देखते हैं मिस्टर राणा, वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, काम बोलता है, लोग नहीं। साइट विजिट खत्म हुई, झलक आसपास का इलाका देखने लगी, खुला स्पेस और हर तरह की सुविधा की संभावना। झलक ने पूरी जगह एक नज़र में देख ली, यही सही है, उसने बिना झिझक कहा, यहां शांति है, काम भी अच्छे से हो सकता है। आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, वाकई शानदार चॉइस है मिस मल्होत्रा, आपने पहली नज़र में ही इस जगह की अहमियत पहचान ली। फिर उसने थोड़ी दूरी पर बहती नदी की ओर इशारा किया, और वो देखिए, फैक्ट्री से थोड़ी दूरी पर नदी है, सुना है सीधे पहाड़ों से निकलती है, हमारे काम में ये बहुत मददगार हो सकती है। झलक के कदम अपने आप नदी की ओर बढ़ गए, पानी की कलकल, चिड़ियों की चहचहाहट और चारों ओर फैली शांति। उसे अजीब सा सुकून मिला। कुछ पल के लिए उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुईं, सिद्धार्थ खुराना की लाल आंखें, उसका चेहरा, उसकी बेरुखी, सब कुछ सामने आ गया। झलक ने झट से आंखें खोल दीं, गुस्से और नफरत से बोली, सिद्धार्थ खुराना, अब तुम्हारा मेरी यादों में भी आने का कोई हक नहीं है, उसने नफरत से कहा। सभी लोग इधर उधर हो गए। वहीं झलक गाड़ी की ओर बढ़ी। आदित्य पीछे से बोला, कल क्लाइंट मीटिंग है, आपको आना होगा। झलक ने पलट कर देखा, टाइम और लोकेशन भेज दीजिए। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गई, लेकिन आदित्य वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, झलक मल्होत्रा आसान नहीं है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक और दिलचस्प बनाती है। और बिना कुछ और बोले सीधे जाकर गाड़ी में बैठ गई। आदित्य ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। अभी कुछ पल पहले वही माहौल झलक को सुकून दे रहा था, और अचानक वो ऐसे भड़क उठी जैसे किसी ने उसके जख्म कुरेद दिए हों। वो सोच में पड़ गया, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, फिर उसे अचानक इतना गुस्सा क्यों आया? उसने गाड़ी में आकर बैठते हुए पूछा, मिस महोत्रा, आप ठीक तो है ना? झलक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ठंडे लहजे में कहा, गाड़ी चलाइए। आदित्य ने बिना कुछ पूछे गाड़ी स्टार्ट कर दी। सड़क पर गाड़ी दौड़ने लगी। पूरे रास्ते झलक चुप रही। आदित्य के मन में विचारों का तूफान था। आज तक न जाने कितनी लड़कियां मेरी जिंदगी में आईं, कोई बिजनेस के बहाने, कोई दोस्ती के नाम पर, कोई किसी और उम्मीद के साथ, लेकिन आज पहली बार मेरी गाड़ी में एक ऐसी लड़की बैठी है जिसे ना मुझसे बात करने में दिलचस्पी है, ना मुझे देखने में। और यही बात उसे झलक की ओर और खींचती चली जा रही थी। आखिर इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कौन सा राज छुपा है? गाड़ी आगे बढ़ती रही, और कहानी भी धीरे धीरे एक और मोड़ की ओर।